प्रवचन सार, प्रवचन सुधा, भाग छठवा, लेक्चर नंबर 470। ओम नमः सिद्धेभ्य,
ओम
नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम चुतात्मने नमः,
नमो
अरिहंताम्, नमो सिद्धाणम्,
नमो आयर्याणम्,
नमो वज्झायाणम्,
नमो लोए सौवसाहूणम्,
सुर असुर नरपति वंदने प्रविनष्ट घाती कर्मने प्रणमन करू धर्म कर्ता तीत श्री महावीर ने वरिशेष तीर्थंकर ने सौ सिद्ध शुद्धासीत्वने मुनि ज्ञान दृग चारित्र तप वीर्या चरण संयुक्तने ते सर्वने साथे तथा प्रत्येकने वंदो वणिहु मनुज क्षेत्रे वर्तता अरहंतने अरहंतने सौसीधने य नमस्करण करिए रीते गणधरने अध्यापकोने सर्वसाधु समूहने सुशुद्ध दर्शन ज्ञान मुख्य पवित्र आश्रम पामिने प्राप्ति करू साम्यनी ये नाथि शिव प्राप्ति बने।
आचार्य श्री कुनकुन भगवान द्वारा रचित यह प्रवचन सार नामक परमागम ग्रंथ है। उसके ऊपर गुरुदेव श्री आचार्य अमृतचंद्र ने तत्व प्रदीपिका टीका लिखी हुई है तथा जयसेनाचार्य ने तात्पर्य युक्ति टीका लिखी है। इन पर गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के जो प्रवचन हुए हैं वो प्रवचन सुधा पुस्तक रूप से प्रसिद्ध हुए हैं। उसमें से छठी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 55 पर हम आगे 55 ये नई गाथा 130 नंबर की हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले उसका हेडिंग देखते ऊपर। अथ द्रव्य विशेषो गुण विशेषात इति प्रज्ञापयति। यानी द्रव्य का जो विशेष है वो गुणों के विशेष के कारण उसके विशेषता होती है उसकी बात यहाँ बता रहे हैं। उसी का गुजराती यहाँ अनुवाद लिखा है पीछे 56 पर पहले लाइन में। हवे गुण विशेष थी द्रव्य विशेष छे अर्थात गुणोना भेद थी द्रव्यो भेद छे एम जनावे छे। यानी जो द्रव्य में जीव अजीव से भेद किए तो उसके गुण के कारण जैसे जिसमें ज्ञान गुण है वो जीव है इस तरह से गाथा पढ़ेंगे। पहले
लिंगे ही जे ही दौवम जीवम अजीवम च हव दिविन्नादम ते अत भाव विसिद्धा मुत्ता मुत्ता गुणानेया। लिंगैः यैः द्रव्यं जीवो जीवश्च भवति विज्ञातम् ते अतद्भाव विशिष्टा मूर्ता मूर्ता गुणागेया। जे लिंगति द्रव्यो महि जीव अजीव हे मजनाय छे ते जान मूर्त मूर्त गुण तत्पणापि विशिष्ट जे।
यहाँ जो हमने गाता पड़ी लिंगई ये के ऊपर बिंदी हुई है वो रफार चाहिए ना लिंगई रही ये रिये क्योंकि उसके विसर्ग का वहाँ रफार हो जाता है मैं कंफर्म करती हूँ हाँ द्र पर ही चाहिए यही के यही वाला विसर्ग द्र के ऊपर चला गया और लिंग ही वाला विसर्ग यही के ऊपर होना चाहिए था
कैसा चाहिए और लिख के दिखा
एक मिनट यहाँ संस्कृत वाले श्लोक ही नहीं केवल यहाँ पर प्राकृत वाले ही हैं यही के ऊपर बिंदी है ना संस्कृत पहली लाइन लिंगई रियई यही के ऊपर बिंदी उसके बदले वहां रफार चाहिए
यानी चौथा शब्द जो यही ही है
चौथा अक्षर
अक्षर अक्षर वहां रफार चाहिए
हाँ यही बिंदी के बदले द का निकालना नहीं और भी रखना है यानी लिंगय ही यही ही द्रव्यम यानी जिन लिंगों के द्वारा द्रव्य यानी यही ही लिंगय ही द्रव्यम जीव अजीव विज्ञातम भवती यानी जिन लिंगों के द्वारा द्रव्य जीव और अजीव ऐसा पहचानने में आता है वो है होना चाहिए अभी हम अन्वयार्थ पढ़ेंगे यहाँ लिखा ना यही ही लिंगई ही देखो यही के आगे भी विसर्ग है वो द्र के ऊपर चला गया और लिंगई ही के आगे विसर्ग है वो यही के ऊपर चला जाएगा यानी जे लिंगो वड़े लिंग ने यहाँ चिन्ह कहो यहाँ गुण कहो जे लिंगो वड़े द्रव्यम द्रव्य जीव अजीव च जीव ने अजीव तरीके विज्ञातम भवती जनाय छे यानी जिसके द्वारा जिन चिन्हों के द्वारा या जिन लक्षणों के द्वारा यह द्रव्य जीव है कि अजीव है ये हम पहचानते हैं ते को ते ही कहा अतद भाव विशिष्टा अतद भाव विशिष्ट यानी द्रव्य थी अतद भाव वड़े भिन्न एवा मूर्ता मूर्ता मूर्त अमूर्त गुणा गुणों गेया जानवा अतद भाव यानी द्रव्य और गुण में क्या है अतद भाव है यानी वो द्रव्य से क्षेत्र से काल से अभेद है भाव से भिन्न है ना अतद भाव तद्भाव नहीं है दोनों का भाव जुदा जुदा है
हम तो दो गुणों के बीच में अतद भाव बताते हैं यहाँ द्रव्य और गुण में अतद भाव बताते हैं। दोनों ही सही है
दोनों ही सही ठीक है अभी पढ़ते इसकी ये समझ में आई ना कि जे लिंगो वड़े द्रव्य जीव ने अजीव तरीके जनाय छे तेने
द्रव्य
हाँ अतद भाव विशिष्ट मूर्त अमूर्त गुणों जानवा तेने द्रव्य ने तेने गुणों ते लिंगो जे लिंगो ते लिंगो ऐसा जे लिंगो वड़े द्रव्य जीव है कि अजीव ऐसे हम पहचानते हैं ते लिंग जो है वो क्या है अतद भाव विशिष्ट ऐसे मूर्त अमूर्त गुणों ये गुण है उसको गुण जानना अभी टीका द्रव्य नो आश्रय करीने अने पर नो आश्रय कर्या विना वर्तता होवाथी जेमना वड़े द्रव्य लिंगित थाय छे ये द्रव्य का आश्रय करके वर्तते हैं कौन
गुण
कहाँ लिखा है द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा गुण है वो द्रव्य के आश्रय से रहते हैं गुण के आश्रय से नहीं
गुणों के आश्रय से गुण नहीं
रहते तत्वार सूत्र में लिखा है कहते हैं द्रव्य नो आश्रय करीने वर्तता हुआ थी और उसी के साथ क्या बताए, परनो आश्रय कर्या बिना। हमारी परिभाषा क्या है, विशेष गुणों, विशेष गुणों की अपने अपने द्रव्य में रहते हैं, तो ये इसमें आ गए, पर के आश्रय से नहीं रहते। जेमना वड़े यानी जिनके द्वारा द्रव्य लिंगित है यानी चिन्हित होता है, यानी हम उसको पहचान सकते हैं। द्रव्य की पहचान उसके विशेष गुणों के द्वारा होती है, उसको यहाँ लिंग कहा, ओळखी शकाय छे, एवा लिंगो गुण छे। यानी गुण की यहाँ परिभाषा बतानी थी हमको, विशेष गुणों की, तो उसके जिन चिन्हों के द्वारा द्रव्य इसे अलग है, विशिष्ट है, वो हम पहचानते हैं, उन लिंगों को यहाँ गुण कहा। ते वो यानी ते गुणों, जे द्रव्य छे ते गुणो नथी, जे गुणो छे ते द्रव्य नथी, ते अपेक्षा है। देखो जो द्रव्य का जो द्रव्य है वही गुण का द्रव्य है, द्रव्य का जो क्षेत्र है वही गुण का भी क्षेत्र है, क्योंकि गुण उसी को कहते हैं जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में, उसकी संपूर्ण अवस्था में रहते हैं। इसलिए काल भी अनादि अनंत तो वही है, परंतु भाव जुदा जुदा है। इसलिए क्या कहेंगे, जो द्रव्य है वो गुण नहीं है और गुण है वो द्रव्य नहीं है। हाँ, ते अपेक्षाएं यानी कथनचित भिन्नता है उनमें, द्रव्य थी अतद भाव वड़े विशिष्ट वर्तता थका, यानी भिन्न वर्तता थका। द्रव्य से भिन्न है क्या गुण, तो कहते इस अपेक्षा से। सर्वथा भिन्न, प्रदेश भिन्न है, प्रत्येक पृथक्त्व नहीं है, परंतु उन दोनों का भाव जुदा जुदा है, उस अपेक्षा से समझना। तो कहते कि ते अपेक्षाए द्रव्य थी अतद भाव वड़े, यानी अतद भाव के द्वारा भिन्न होने वाले, भिन्न हमने भी वो अन्य, उसमें पृथक प्रदेशत्व नहीं है, अन्यत्व है, ऐसे रहते हुए लिंग ने लिंगी तरीके ने प्रसिद्धि, जिसका लिंग है वो उसको कहेंगे लिंगी, जैसे गुण और गुणी कहते हैं, तो लिंगी जिसका लिंग, किसका हम चिन्ह बता रहे थे द्रव्य का, तो द्रव्य को हम लिंगी कहेंगे। तो लिंग ने लिंगी तरीके ने प्रसिद्धि, प्रसिद्धि ने ख्याति यानी ओळखाण वक्ते, द्रव्य ना लिंगपणा ने पामे छे। यानी जब हमको द्रव्य लिंगी की प्रसिद्धि करनी है, तो वे द्रव्य के ये लिंग है, ये द्रव्य के लिंग है। हवे तेवो, तेवो ने ते गुणों द्रव्य मा आ जीव छे, आ अजीव छे, एवो विशेष उत्पन्न करे छे। यानी कोई ये द्रव्य जीव है कि अजीव है, हम कैसे पहचानेंगे, हम पूछेंगे ये द्रव्य कौन सा है, जीव द्रव्य है कि अजीव द्रव्य है, तो आप कहेंगे अजीव, तो कैसे पहचाना, उनके लक्षण के द्वारा। तो कहते ऐसा जो भेद उत्पन्न करते हैं, कारण के पोते पण तद्भाव वड़े विशिष्ट हुआ थी विशेष ने प्राप्त छे। क्या कहा,
प्रत्येक द्रव्य
पहले बताते द्रव्य थी अतद्भाव वड़े विशिष्ट वर्तता थका, लिंग ने लिंगी तरीके नी प्रसिद्धि वक्ते द्रव्य ना लिंगपणा ने पामे छे। हवे तेवो यानी गुणों द्रव्य मा आ जीव छे, आ जीव छे, एवो विशेष उत्पन्न करे छे, यानी भेद उत्पन्न करे छे, कारण के पोते पण तद्भाव वड़े विशिष्ट हुआ थी विशेष ने प्राप्त छे। तद्भाव ने उसका अपना भाव, जे जे द्रव्य नो जे जे स्वभाव होए तेनु तेनु ते ते वड़े विशिष्टपणु होवाने लीधे तेमनामा विशेष अर्थात भेद छे। क्या कहते हैं, ये जो गुण जो है ना, वो उस द्रव्य का वो स्वभाव है और उसके द्वारा वो उसका विशेषपना है। तेथीज वड़ी मूर्त ने अमूर्त द्रव्यों मूर्तत्व अमूर्त रूप तद्भाव वड़े विशिष्टपणु होवाने लीधे आ मूर्त गुणों छे, आ अमूर्त गुणों छे, एम तेमनामा विशेष एटले भेद नक्की करवा योग्य छे। क्या कहते हैं, मूर्त द्रव्य है उसके गुण भी मूर्त है, अमूर्त जो है वो अमूर्त है, इसलिए उस गुणों को ये मूर्त गुण है और ये अमूर्त गुण है, ऐसा कहेंगे। ये तो हो गई अमृत चंद्राचार्य की टीका। अब पीछे चलते हैं जयसेनाचार्य की टीका, 55 पेज पर नीचे का पैराग्राफ। एवं जीव अजीवत्व लोकालोकत्व सक्रिय निक्रियत्व कथन क्रमेण प्रथम स्थले गाथात्रयम गतम। यानी हम यहाँ जीवों के विशेष बता रहे थे, तो कोई जीव द्रव्य है कोई अजीव द्रव्य है, तो एक गाथा के द्वारा उसका भेद बताए। दूसरे में लोकत्व और अलोकत्व बताए, द्रव्यों के भेद लोकत्व अलोकत्व। फिर सक्रिय और निक्रियत्व, वो प्रदेश परिस्पंदन की बात आई थी वहां पर, इसके इस कथन के क्रम से पहले स्थल में तीन गाथाएं गई। अथ यानी अब यहाँ पर ज्ञानादि विशेष गुण भेदेन द्रव्य भेदम आवेदयति। यहाँ ज्ञानादि कह दिया क्योंकि उसके फॉर एग्जाम्पल कहना था, तो ज्ञानादि जो विशेष गुण है उसके द्वारा द्रव्यों के जो विशेष भेद बताएंगे यहाँ पर। लिंगेहिम जेहिम लिंगैहि यैहि, देखो यहाँ आ गया ना, उन्होंने इसका संस्कृत बनाया ना, ये के ऊपर रफर आया, यानी प्राकृत का उन्होंने संस्कृत ट्रांसलेशन करके बताया। तो जिन लिंगों के द्वारा ऐसा है, अब पहले में पहले तो शुद्ध की बात निकालेंगे, तो सहज शुद्ध परम चैतन्य विलास रूपैहि तथैव यानी तथाएव अचेतनैहि जड़ रूपैहि वा लिंगैहि यानी चिन्हैहि यानी विशेष गुणैहि यैहि करणभूतैहि जीवेन कर्तृभूतेन। क्या कहते हैं अभी, ये जो इनके द्वारा करता है इसको कहा, किसको, गुणों को, चिन्हों को, उसी को लिंग कहा। अब उसके लिए क्या क्या शब्द है, देखो पहले में पहले सहज शुद्ध परम चैतन्य विलास रूप, ये किसके, जीव के विशेष बताए। अथवा तथैव उसी प्रकार अचेतन ऐसे जड़ रूप, ये लिंग अलग अलग बताए। कैसे लिंग, पहले सहज शुद्ध परम चैतन्य विलास ये एक लिंग बताया, वो तो जीव की बात है, और अचेतन जड़ रूप जो है ऐसे जो लिंग है, लिंग के लिए दूसरे शब्द क्या बताए, चिन्ह, उसी के लिए विशेष गुण। यही कर्णभूत ही यानी इनके साधन के द्वारा जीवेन कर्तृभूतेन कहते हवदि विन्नादम विशेषेन ज्ञातम भवती, यानी जो जीव है वो विशेष रूप से ज्ञात होते हैं, यानी वो पहचाने जाते हैं। जीव और अजीव का भेद हमेशा विशेष गुणों के द्वारा कर सकते हैं। किम कर्मतापन्नम द्रव्यम, तो कि द्रव्य को यानी किसके ये विशेष भेद करते हैं, तो कि द्रव्य के।
किम कर्मतापन्नम का अर्थ क्या लेना,
वाक्य का कर्ता क्या है, जीव, वाक्य का कर्म कौन है, तो द्रव्य। जैसे हम व्याकरण में सीखे ना स्कूल में, राम ने आम खाया तो राम हुआ कर्ता, आम हुआ उसका कर्म, ऐसे यहाँ के द्रव्य को पहचाना जाता है। कथम भूतम, ये क के ऊपर बिंदी नहीं चाहिए, थ के ऊपर चाहिए। कथम भूतम, ये द्रव्य कैसे है, तो कहते जीवम अजीवम च, जीव द्रव्यम अजीव द्रव्यम च। यानी ये जो द्रव्यों को कैसे, जो द्रव्य है जीव और अजीव द्रव्यों को, ये जाना जाता है विशेष करके, यानी वो चिन्हों के द्वारा विशेष गुणों के द्वारा जीव और अजीव द्रव्यों को भेद जाना जाता है उसका। ते मुत्ता मुत्ता गुणाने या, ते यानी ताने यानी ऊपर जो गुण बताए हैं, पूर्वोक्त चेतन अचेतन लिंगानि, चेतन और अचेतन जो लिंग बताए, लिंग यानी चिन्ह, चिन्ह यानी गुण बताए, मूर्ता मूर्ता गुणा गेया ज्ञातव्या, यानी उसके द्वारा मूर्त और अमूर्त ऐसे गुण जानने चाहिए। तेच कथम भूता, और वो कैसे है वो गुण, कहते अतद्भाव विशिष्ठा, अतद्भाव विशिष्ठा, यानी वो अतद्भाव से विशिष्ट है, विशेष है। तद यथा, वो इस प्रकार है, शुद्ध जीव द्रव्य ये केवल ज्ञानादि गुणा तेषां, शुद्ध जीव प्रदेश ही सह यद एकत्व भिन्नत्व तन्मयत्वम स तद्भाव। क्या कहते हैं कि शुद्ध जीव द्रव्य में जो केवल ज्ञानादि गुण है उनका शुद्ध जीव प्रदेशों के साथ जो एकत्व बताया है, एकत्व भिन्नत्व जो है वो तन्मयत्व जो है, उसको तन्मयपना जो है वो तद्भाव है। क्या कहते हैं केवल ज्ञानादि गुणों का जीव के प्रदेशों के साथ क्या है जो एकत्व है, तन्मयत्व है, उसको तद्भाव कहा।
भिन्नत्व कहाँ लेना,
भिन्नत्व अभिन्नत्व होना चाहिए था, भिन्नत्व क्यों कहा, एक मिनट,
एकत्व चाहिए ना।
हाँ कहाँ, 130 वाला है ना ये लिंग ही, यद एकत्वम अभिन्नत्वम पूरा म गया है
के त्वम के ऊपर अनुस्वार दे,
नहीं 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 पूरा म, क्योंकि एकत्वम और अभिन्नत्वम चाहिए।
अच्छा अच्छा अच्छा
पूरा म चाहिए यहाँ पर, समझ में आया।
आया
बोलो कर जी। यद एकत्व म भिन्नत्व म, क्योंकि भिन्नत्व कहेंगे तो तन्मय कैसे हो जाएंगे, तद्भाव कैसे होगे, अभिन्नत्व होना चाहिए था, पर एकत्वा करते तो वो तो एक समान होने चाहिए ना, उनके विभक्ति एक समान होनी चाहिए, एकत्वम अभिन्नत्वम। हाँ। क्या कहते फिर करते कि शुद्ध जीव द्रव्य में जो केवल ज्ञानादि गुण है उनका शुद्ध जीव प्रदेशों के साथ जो एकत्व है, अभिन्नत्व है, तन्मयत्व है, उसको तद्भाव कहते हैं। ये समझ में आई बात,
बन्यते
तेषाम एव गुणानां, उन्हीं गुणों के तैहि प्रदेश ही सह, उन्हीं प्रदेशों के साथ, यदा जब संज्ञा लक्षण प्रयोजनादि भेद क्रियते, जब उनके नाम जुदे हैं, संज्ञा हुई संज्ञा ने नाम, उनके लक्षण जुदे जुदे हैं, परिभाषा उनकी जुदी है, द्रव्य की परिभाषा जुदी, गुणों की जुदी, प्रयोजन उनका अपना अपना उनका जो है, तो कहते इसके अपेक्षा से जब भेद करने में आता है, जब वो यदा भेद क्रियते, जब उनका भेद करने में आता है, तदा तब पुनः अतद्भावो भन्यते।
मेरा एक प्रश्न है,
ये अतद्भाव गलत लिखा है, अतद्व भावो लिखा है, और द के नीचे भ लगाना चाहिए, समझ में। जैसे तद्भाव लिखा है ना वैसे अतद्भाव होना चाहिए। आपका कोई प्रश्न बता रहे।
जब हम देखते हैं
ऐसा करना, वो द्व है ना उसके बदले द का खोड़ो करो, तद भाव हो
अच्छा।
जाता है। हाँ वो तो सिंपल हो जाएगा। हाँ द को खोड़ा करो, वो निकाल दो, द को वो लगाए ना वो नहीं चाहिए।
अरे उसके जगह द आधा लिखो ना बाजू में,
वही वही द आधा लिखो बाजू में।
अच्छा मेरा ये
हाँ का प्रश्न,
प्रश्न ऐसा है, हम जब गुण और द्रव्य को अलग अलग बताते हैं
हाँ।
तो उसमें संज्ञा लक्षण प्रयोजन ये तो हम बताए, आदि में किसको लेना, क्योंकि हमने बहुत जगह ऐसा ही देखा है आदि बोल देते हैं, लेकिन
संख्या भी आती है ना उसकी, संख्या भी आती है
और
तो आदि हो जाएगी ना, चार बातें तो होती है।
जब आदि कहते हैं तो आदि होना चाहिए ना, वृषभ आदि हाँ, तो बाकी 24 आते हैं ना उसमें, वैसे कम से कम दो
तीन पहले लिखे और बाद में आदि में एक लिखा है
उसके हमें पता नहीं है इसलिए मैंने पूछा।
नहीं नहीं वो संख्या भी होती है, संख्या संज्ञा लक्षण प्रयोजन, फिर भी वहाँ पर भी आदि कहने की पद्धति है। हाँ तेन अतद भावेन उस अतद भाव से संज्ञादि भेद रूपेन, यानी वो अतद भाव कैसा है, संज्ञादि भेद रूप से जो अतद भाव है उसके द्वारा स्वकीय स्वकीय द्रव्येन सह अपने अपने द्रव्य के साथ विशिष्टा यानी भिन्ना इति, वो अपने अपने द्रव्य के साथ भिन्न है, किसकी अपेक्षा, संज्ञा आदि के अपेक्षा से वो द्रव्य से भिन्न है, वही अतद भाव है, तद्भाव नहीं है। पहले तद्भाव कहा था, हाँ अभी अतद्भाव कह रहे। द्वितीय व्याख्यान न, पुनः दूसरे प्रकार से व्याख्यान करते हैं तो स्वकीय द्रव्येन सह तद्भावेन तन्मयत्वेन अन्य द्रव्यात् विशिष्ट भिन्ना इति अभिप्राय। दूसरा अर्थ क्या है, वो स्वकीय ने अपने अपने द्रव्य के साथ तद्भाव रूप से है, तन्मयत्व है और अन्य द्रव्य से विशिष्ट है यानी भिन्न है, यानी जो गुण है अपने द्रव्य से अभिन्न है, तद्भाव रूप है, पर द्रव्य से अतद्भाव रूप है। एवं गुण भेदेन द्रव्य भेदो ज्ञातव्य, यानी वो गुण जो है दूसरे द्रव्य में नहीं है, उसके साथ उसका अतद्भाव है, इसलिए भी दो द्रव्यों में भिन्नता समझ में आती है। अभी हमको पढ़ना है प्रवचन गुरुदेव का, 57 पृष्ठ है, 57 प्रवचन सार 130 गाथा। अब यह बतलाते हैं कि गुण विशेष से यानी गुणों के भेद से द्रव्य विशेष यानी द्रव्यों का भेद होता है, यह हमारी भाषा में पर्टिकुलर द्रव्य है वो उसके पर्टिकुलर गुणों के द्वारा हम पहचानते हैं। क्या कहते हैं कि छह द्रव्य में प्रत्येक गुण की भिन्नता से द्रव्य की भिन्नता भासित होती है, प्रत्येक द्रव्य का गुण भिन्न भिन्न है तो इस गुण से गुणी ख्याल में आता है, इस कारण से गुण की व्याख्या करते हैं। ये गुण की परिभाषा बताई कि जिन चिन्हों के द्वारा, जिन लिंगों के द्वारा, ऐसे बताए ना यहाँ पर कि जो द्रव्यों के विशेष जानने में आते हैं। अब यहाँ नीचे पढ़ते देखो, द्रव्य का आश्रय लेकर, ये टीका अमृतचंद्राचार्य की टीका का प्रवचन, गुण उसे कहे कि जो वस्तु का आश्रय लेकर गुण रहा है और इस गुण से वह द्रव्य जानने में आता है, ऐसी बात। द्रव्य का आश्रय लेकर जो गुण है वह प्रत्येक द्रव्य का आश्रय लेकर वह गुण रहता है, द्रव्याश्रया गुणा, गुणाश्रया द्रव्य नहीं, द्रव्य के आश्रय से गुण रहते हैं, गुणों के आश्रय से द्रव्य नहीं रहता है। और वो अपने अपने द्रव्य के आश्रय से, किसी भी द्रव्य के आश्रय से जाकर मिले उसको नहीं कहेंगे, द्रव्य का आश्रय लेकर और पर के आश्रय के बिना, देखो इसको अनेकांत कहते हैं, इसके भी और उसके भी उसको अनेकांत नहीं कहते, थोड़ा इसका आश्रय ले थोड़ा उसका आश्रय, ऐसा नहीं है। आगे लिखा है देखो, यह अनेकांत किया, मैंने पढ़ा भी नहीं था, अपना आश्रय लेकर और पर के आश्रय बिना प्रवर्तमान होने से। देखो कल बात आई ना जो निश्चय मोक्ष मार्ग व्यवहार मोक्ष, यानी तो शुद्धोपयोग जो है, अंतरंग में स्थिरता जो है, निश्चय रत्नत्रय जो है, उसी के आगे बढ़कर फिर मोक्ष होगा। जो शुभ भाव रूप जो जिसको व्यवहार कहने में आता है उससे नहीं होगा, ये अनेकांत हुआ। और लोग एक अनेकांत किसको समझते, इससे भी होता है और उससे भी होता है, उसको अनेकांत नहीं कहते। हाँ
ये बात मेरे लेक्चर में आई थी,
हाँ आप ही कल आई थी ना, अपना आश्रय लेकर और पर के आश्रय बिना प्रवर्तमान होने से, लिंग ने गुण चिन्ह, प्रत्येक द्रव्य का गुण द्रव्य के आश्रय से रहा है, यह गुण पर द्रव्य के आश्रय से है नहीं, यानी गुण द्रव्य के आश्रय से रहा और वो गुणों का परिणमन जो पर्याय वो पर के आश्रय से हो जावे, ये बात कैसे हो जावे, जिनके द्वारा द्रव्य लिंगित, लिंगित यानी चिन्हित होता है, चिन्हित यानी उसको पहचाना जाता है। 58 पृष्ठ, जिनके द्वारा द्रव्य लिंगित, जिनके द्वारा लिंग से लिंगित नाम प्राप्त होता है, उसके बारे में विशेष कहेंगे। हाँ, यह तो पहले सिद्धांत रखते हैं। लिंग के द्वारा वस्तु यानी पदार्थ, लिंग नाम चिन्ह से लिंगित नाम वह द्रव्य प्राप्त होता है, ऐसी बातें हैं। प्राप्त होता है यानी पहचाना जाता है, प्रसिद्ध होता है, पहचाना जा सकता है, ऐसे लिंग गुण है। है क्या कहा? जिस लिंग से यानी गुण से, जो गुण जिस द्रव्य के आश्रय गुण है, वह गुण पर के आश्रय नहीं, यह गुण लिंग है, तो लिंगित नाम द्रव्य इस गुण से प्राप्त होता है। विशेष कहेंगे, हाँ यहाँ तो अभी व्याख्या कहते हैं, यानी टीका में ही उसको और खोलने वाले। वे गुण जो द्रव्य है वे गुण नहीं है, जैसे आत्मा में चेतना गुण है, तो चेतना गुण लिंग है, तो चेतना गुण से लिंगित नाम द्रव्य का ज्ञान होता है, ऐसी बात है। समझ में आया? चेतन का चेतना यह गुण है, चेतन का चेतना यह लिंग है, चिन्ह है। इस गुण से गुणी नाम आत्मा यानी लिंगी, लिंग से लिंगी प्राप्त होता है, अथवा लिंग से लिंगी पहचाना जाता है। ऐसा कहाँ था? आपके यहाँ वैष्णव में था, ईश्वर करता है जाओ। यह तो वस्तु स्वभाव है, नहीं जहाँ जो जिनागम में जो बता रहे हैं, तो वस्तु का स्वरूप बता रहे हैं। भगवान आत्मा लिंगी यानी द्रव्य, उसका लिंग चेतना, चेतना लिंग से लिंगी नाम आत्मा जानने में आता है। ऐसे छह द्रव्य कहेंगे, यानी हर एक द्रव्य के अपने अपने लिंग जो है, चिन्ह जो है, गुण है, वो जुदे जुदे हो। परद्रव्य के संबंध से, परद्रव्य के गुण से आत्मा जानने में आता है, ऐसा है नहीं। और हम तो उसी के द्वारा कोशिश करते हैं, ये शरीर के जो गुण है, स्पर्श रस गंध वर्ण, उसके द्वारा अपनी पहचान करना चाहते हैं। उसके द्वारा तो पुद्गल जानने में आता है, वो पुद्गल का लिंग है। परद्रव्य के संबंध से, परद्रव्य के गुण से आत्मा जानने में आता है, ऐसा है नहीं। अपनी ज्ञान चेतना लिंग है, और ज्ञान चेतना द्वारा लिंगी नाम आत्मद्रव्य प्राप्त होता है, पहचाना जाता है कि यह चेतना ही आत्मा है। आहा, मुमुक्षु कहते तत्वार सूत्र में तो अकेला उपयोग ही लिया है। गुरुदेव श्री कहते उपयोग लिया है, यहाँ चेतना लिया है। चेतना और चेतना का उपयोग दोनों आ गए ना। चेतना त्रिकाल है, परंतु चेतना का उपयोग यानी परिणति है, वह परिणमन है। चेतना परिणमन है, वह उसका लिंग है। चेतना गुण है, उससे लक्ष्य नहीं हो सकता क्योंकि गुण तो ध्रुव है। ये पहली बात आई थी, चेतना और उपयोग में पना, वो दोनों लिए थे। चेतना गुण है, यह तो त्रिकाल है, और वस्तु भी त्रिकाल है, परंतु इस गुण से द्रव्य का लक्ष्य नहीं होता। क्या कहते हैं? लक्षण तो हम उसको कहेंगे, परंतु वो हमारे ख्याल में तो नहीं आता। यह गुण पर्याय जो है, इससे जानने में आता है। वो गुण की जो पर्याय है, उसको गुण पर्याय का, उसके द्वारा उसको वो जानने में आ जाता है। जानने में आता है तो पर्याय में जानने में आता है ना। क्या गुण से गुणी जानने में आता है? वो गुण से तो प्रसिद्ध होता है, परंतु तो गुण और द्रव्य दोनों ही पर्याय के द्वारा पर्याय में जानने में आता है। गुण पर्याय, ज्ञान पर्याय, परिणति, चेतना, यह पहले आ गया है। चेतना और चेतना उपयोग, ये दो आ गया है ना। चेतना और चेतना का उपयोग, वो न बराबर करो, दो से जानने में आता है, परंतु उसका अर्थ यह है, यह आत्मा भगवान चेतना के स्वभाव से जानने में आता है, परंतु किसे? ज्ञान की पर्याय को। समझ में? कौन जानता है? तो पर्याय जानते हैं, परंतु जानने में क्या है? तो चेतना स्वभाव के द्वारा वो जीव द्रव्य है, ऐसा हम नक्की करते हैं। ध्रुव में ध्रुव से जानने में आता नहीं। ये जानने में आना, ये कार्य हुआ, वो तो पर्याय में होता है। जिसमें पर्याय का कार्य होता है उसमें वह जानने में आता है। समझ में आया? जिसे धर्म करना हो उसे चेतना लक्षण द्वारा ज्ञान को जानना यह धर्म है। प्रश्न कहते बाकी के समय में व्यापार करना कि नहीं? देखें कौन करे है? समाधान, कौन व्यापार करे? कर सकता है कहाँ? ये करूँ क्या नहीं करूँ का सवाल तब होता कि जब तू कर सकता था। जीवों को यही ना, कुछ किया लगता है, ये जाना है वो कि कुछ किया ऐसे लगता ही नहीं है। इसलिए बाकी के समय तो ये कर सकते हैं ना, पूछ रहे जानबूझकर पूछ रहे हुँ? उस वक्त तो राग करता है, राग करता है और मानता है कि मैं व्यापार करता हूँ। क्या कहा हुँ? मेरी भाषा में उसकी लिमिट कहाँ तक? अपने राग तक, विकल्प तक। परद्रव्य का कार्य उसके हाथ की बात है ही नहीं है हुँ? आपने सुना होगा मराठी में कहावत है, सरड्याची धाव कुंपना पर्यंत। अभी जीव की धाव कहाँ तक है? अभी बहुत तो राग तक, वो भी विभाव है उसका। तो परद्रव्य का कार्य ना ज्ञानी करता है ना अज्ञानी, वो बात है ना। अज्ञानी को राग का करता कहो तो कहो, कहो तो कहो, क्योंकि वो मान भी रहा है और वो परिणति में है इसलिए। परंतु परद्रव्य का करता ज्ञानी अज्ञानी कोई भी नहीं है। शास्त्र में आता है ना, क्या कहते हैं, उस वक्त तो राग करता है, राग करता है ना, विकल्प करता है, मैं ऐसा करूं, मैं वैसा करूं, मैं वैसा करूं, और मानता है कि मैं व्यापार करता हूं, यह तो भ्रमणा है। एक न्याय से ऐसा नए अधिकार है, तेरवा जयधवल है, तेरवा अधिकार। समय सार की तीसरी गाथा में तो ऐसा कहा है, आत्मा और प्रत्येक द्रव्य सूक्ष्म बात है प्रभु, अपने गुण पर्याय को चूमते हैं परंतु पर को छूते नहीं, छूते नहीं। अब तेरहवें अध्याय में यह आया, पहले एक बार कहा था जयधवल का तेरहवा भाग कि परमाणु को आत्मा स्पर्शता है, परमाणु परमाणु को स्पर्शता है, आत्मा परमाणु को स्पर्शता है, स्पर्श का अर्थ संबंध होता है तो स्पर्शता है, ऐसा कहने में आया। पूरा स्पर्श अधिकार है, पहले एक बार कहा था, बहुत सूक्ष्म बातें बापू, तेरहवा अधिकार है ना, बहुत सूक्ष्म है। मैं तो फक्त आकाश के प्रदेश से एक आत्मा में अनंत गुण है, ऐसा कहाँ है यह ढूंढ रहा था, लेकिन हाथ में आता नहीं। धवल जयधवल महाधवल में है ऐसे एक मुमुक्षु से बात हुई थी, एक भाई भले कहे यह अब आपने नया निकाला, लेकिन ऐसा नहीं है। एक मुमुक्षु से बात हुई थी, एई कहाँ गए? एक मुमुक्षु से बात हुई थी, ऐसा नहीं है कि उन्होंने ना कही थी कि ऐसा नहीं है। उनके साथ बात हुई थी, आत्मा के गुण की संख्या आकाश के प्रदेश से अनंत गुणी है, वह कहाँ है ये इस समय याद नहीं। समझ में आया? श्रद्धा का विषय द्रव्य गुण पर्याय है ऐसा वे कहते थे, वह दूसरी बात है, वह सब मालूम है, यह तो दूसरी बात है, लेकिन कहाँ है ये मिलता नहीं। बिना शास्त्र आधार में कहा नहीं, और संख्या का प्रमाण तो हो ना शास्त्र में, द्रव्य में कितने गुण है इसकी संख्या का प्रमाण तो होगा ना, इतने इतने धवल जयधवल भरे हैं। एक परमाणु में छह अवयव कहे, चार दिशा और दो विदिशा, दो विदिशा नहीं, ऊपर और नीचे ऐसा होगा, क्योंकि छह कोण बताते हैं ना उसमें, छह कोण यानी षटकोण, ऐसा आकार नहीं लेना उसका। षटकोण अगर लेते हैं तो बात अलग होगी, परंतु उसको हम छह दिशाओं से देख सकते हैं ना, इसलिए उसको बताते हैं ऐसा। ये पंचाध्याय में उसको खोला है बराबर हमने, आपको याद है कि नहीं मालूम नहीं, परमाणु को छह कोण बताए है ना, वो बात वहां बताई थी पंचाध्याय में। ऐसा सूक्ष्म में सूक्ष्म परमाणु उसे भी छह अवयव कहे, अवयवी परमाणु है, सूक्ष्म बात है भाई, यानी उसके छह टुकड़े नहीं हो सकते। ख्याल में आती ना, बस वो तो छोटे में छोटा अंश है। यह तो वितराग सर्वज्ञ परमात्मा का कहा हुआ है, परमाणु परमाणु को स्पर्शता है ऐसा कहा, वह नैगम नय के कथन से संबंध किया उसे स्पर्शता है ऐसा कहने में आया। ऐसे आत्मा परमाणु को स्पर्शता है ऐसा स्पर्श का बड़ा अधिकार है। 13वां अधिकार में बहुत साल पहले बात हुई थी, मूल बात साधारण है इसलिए वह बात विशेष नहीं कहते थे। यहाँ तो अंतर में प्रयोजनभूत हो वह बात विशेष कहने में आती है, यह बात तो जानने की चीज है। क्या कहा, यह सब जो विस्तार से है वह ज्ञान का ज्ञेय है। प्रयोजनभूत बातें क्या है, आत्मा के अनुभव में जो विशेष कार्यकारी है उसको यहाँ प्रयोजनभूत बात कहा। फिर भी वो ज्ञान का ज्ञेय है और वो ज्ञान जानने की चीज है। आत्मा और परमाणु का संबंध होता है तो स्पर्शते है ऐसा कहते हैं। और समयसार की तीसरी गाथा में कहते हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को चूमते नहीं, स्पर्श करते नहीं, छूते नहीं। एक कथन यानी अपेक्षा उनका अलग अलग आता है, संबंध में आता है ऐसा कहा। अभी अभी हमने देखा ना, वो संघात भी होता है जीव का परस्पंद के द्वारा, कर्म नो कर्म के साथ संघात होता है, भेद भी होता है, अलग अपेक्षाओं से अलग कथन होता है।
नैगम नहीं से बात, नैगम नहीं से बात कर रहे।
हाँ, ये स्पर्श मेरे ख्याल से चैधोला में होगा कि धवला में होना चाहिए, स्पर्श अधिकार 13वीं पुस्तक। हाँ लक्ष्मी याद है, मोहनीय कर्म की बात आती है उसमें। हाँ, और उसमें तो 9वां 13वां यानी वहाँ तो श्रेणी की बात है केवल, शायद धवला के होगा 13वां भाग, क्योंकि पूरा स्पर्श का है ना, किसका किसके साथ क्या संबंध होता है उसकी बात है। याद नहीं मेरे को भी,
लेकिन
नहीं 13वीं पुस्तक मिलेगी इमीडिएट
मिलेगी।
हाँ धवला में है कि नहीं इतना ही कन्फर्म करना है ना। मेरे ख्याल से धवला में आया था स्पर्शन वेदना, वो वेदना के अधिकार है ना सब, 10वीं पुस्तक से लेकर सारे वेदना अधिकार है, वेदना फिर वर्गना, वर्गना और वेदना ऐसे दो है। अभी इतना याद कहाँ रहता है। हाँ देखो तब तक हम पढ़ते हैं, यानी वो स्पर्शन नाम का पूरा अधिकार है, वहां वो बातें अलग अपेक्षा से बताई है। और समय सार में जब कहते एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्शता नहीं है, तो प्रत्येक द्रव्य का स्वचतुष्टय जुदा जुदा है। स्वचतुष्टय में क्या आता है, स्वभाव, ये चार बातें आती है। तो उस अपेक्षा से उसको छूता नहीं ऐसा कहेंगे। तो कहते हैं छूते नहीं, यह वास्तविक तत्व है। वह नैगम नय का कथन है, वह ने वहां का संबंध को स्पर्श कहा, बड़ा अधिकार है। हाँ स्पर्श कर्म प्रकृति अनुयोग द्वारा नहीं, वर्गना खंड है ये। पहले तो 10, 11, 12 वो तो सब वेदना खंड थे, ये वर्गना खंड है। धवला होना, हाँ धवला करना वहां तो। हाँ इसमें अलग अलग टाइप के स्पर्श बताए थे। यहाँ धवल 13वीं पुस्तक है, जय धवल जो लिखा है ना वहां धवल करना। पीछे के पेज में 59 पर लिखा था। हाँ
यानी
यहाँ जो लिखा ना एक बार कहा था तेरवा एक न्याय सने तेरवा धवल है।
मुझे ये कहना कि स्वामी जी ने धवल भी देखा था।
जय धवल धवल दोनों देखे थे। हाँ बोलो। तेरहवीं पुस्तक है पेज नंबर 59 पर। वो प्रश्न के बाद जो समाधान है उसकी तीसरे एक न्याय से ऐसा नए अधिकार है तेरवा जय धवल लिखा है ना वहाँ धवल करना
जय को हटाना
जय को निकाल देना तेरवा अधिकार। फिर उसके बाद और नीचे चार लाइन नीचे जय धवल का तेरवा भाग नहीं धवल का तेरवा भाग क्योंकि वो वर्गणा खंड नाम का खंड है उसमें स्पर्श अनुयोग द्वार कर्म अनुयोग द्वार प्रकृति अनुयोग द्वार ऐसे उसमें तीन चार विषय है उसमें सारे वो स्पर्श के ऊपर सारे निक्षेप वगैरह लगाए बहुत विस्तार से हमने पढ़े दो दो बार मगर अभी याद नहीं इतना।
अपने को भी आकाश से आनंद गुना
वो मिला नहीं
मिला नहीं कोई भी किसी भी शास्त्र में नहीं मिला
ये 39 शास्त्रों में कहीं नहीं मिला।
जिन व्यक्ति
शायद उनको पहले का कुछ स्मरण होगा पता
नहीं, नहीं। हाँ। वो कह रहे हैं ना किसी भाई के साथ चर्चा हुई थी
नहीं मगर
वो बता रहे थे कि उनका बहुत अभ्यास था उन्होंने कहा कि उसमें लिखा है
हमने इतने विस्तार से देखा है। अरविंद भाई भी नहीं हमेशा पूछते हैं।
हाँ। मैं क्या कह रहा हूँ गुरुदेव श्री को किसी ने मेरे हिसाब से मिसगाइड किया कि धवला इसमें है इसमें तो उन्होंने काफी चेकिंग
किया वो पहले बताते
उनको
थे। बाद में उन्होंने किसी ने किसी को पूछा हाँ। तो उन्होंने बताया हाँ धवला में आया है
हाँ। तो वही वो तो
गुरुदेव पहले से कहते आए हैं ये हाँ।
उसकी कौन ना कह रहे हैं मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने उनको मिसगाइड
किया
धवला
के नाम से मिसगाइड किया
हाँ। जैसे अभी चल रहे हैं 8 परमाणु
प्रदेश
8 प्रदेश अच्छा
ये 59 पर दो जगह आया ना
हाँ,
हाँ।
निकालो
और यहाँ 60 पेज ऊपर तेरवा अधिकार इतना ही लिखा है वो धवल का
अपन लिखे ना धवल का
धवल के 13वें अधिकार में हाँ, अभी आगे पढ़ेंगे
वहाँ लिखा है बहुत साल पहले बात हुई थी यानी उनके साथ जिनके साथ उनका चर्चा हुई थी ना उनकी बात बता
देखो यह वास्तविक तत्व है कौन सा समय सार का मिला आपको ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8वीं लाइन वह
एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को चूमते नहीं यह हाँ, वास्तविक
वास्तविक तत्व है वह ने वो स्पर्श अधिकार में जो लिखा था वह नैगम नय का कथन है संबंध को स्पर्श कहा बड़ा अधिकार है
39
भाग है ये सब धवल जय धवल महाधवल के मिलके और 1-2 भाग और 2-3 महीने में काशी में छप रहे हैं। यहाँ क्या है वो सारे धवल जो है वो सोलापुर में छपते थे जय धवल मथुरा में और अभी महाधवल जो महाबंध है वो भारतीय ज्ञान पीठ से छपे हैं सारे भगवान के ज्ञान की क्या महिमा बापू उन्होंने जो जाना आहा इतना तो अपने स्तवन में आ गया ना भाई कि हे नाथ तेरे गुण को क्या कहूं मैं अनंत मुख बनाऊं और एक मुख में अनंती जीव करूं तो भी गुण का पार न आवे इतने सारे भगवान आत्मा में गुण है दरिया है दरिया भगवान चैतन्य दरिया है आहा जिसकी कीमत के आगे जगत की कीमत छूट जाती है तेरी लक्ष्मी राज चक्रवर्तीपना इंद्रपना की कोई कीमत नहीं जिसकी स्व लक्ष्मी की संपदा की प्राप्ति के आगे आहा एक्चुअली कीमत जो लिखा है ना वो मराठी जैसा है वो कीमत होना चाहिए
ठीक है
कीमत रस दीर्घ होता है हिंदी में गुजराती में शब्द है क्या कीमत? कीमत कहते हो, कीमत हिंदी में। चेतना से जो चेतन लक्ष्य में आता है, ये चिन्ह बताए ना उसका, लिंग, चेतना के द्वारा चेतन लक्ष्य में आता है, पहचान में आता है। वहां चेतन तो गुण का पिंड है, चेतन वो द्रव्य है और द्रव्य का है गुणों का समूह है, गुण का पिंड है, यानी गुणों का पिंड है, है ना? ऐसी जब दृष्टि हुई तब उसे सम्यक दर्शन कहते हैं, यानी उसने तब अपने को पहचाना कि अपने को तो चेतन द्रव्य जो पहचान लिया उसने, तब उसको स्वयं की पहचान हुई, तब कई सम्यक दर्शन हुआ। इस सम्यक दर्शन में तो मोक्ष सुख का पंथ हाथ आ गया, अब ये सच्चा रास्ता सच्चा पंथ मार्ग मिल गया। राग और द्वेष में जो एकत्व रहता था वह तो दुख के पंथ में था। लोग क्या कहते, पहले राग द्वेष को कम करो, बराबर है ना? कैसे करेंगे कम? हाँ, तो पूरा ही बंद करो ना, कम क्यों कहते हैं?
पूरा
निकाल, कैसे निकालेंगे, मार्ग बता। देखो उसके साथ जो एकत्व पना पड़ा है ना वो छोड़ना है। हमारी भूल कहाँ है, मैं रागी द्वेषी हूँ ऐसा मान रहे हैं, और मैं राग को कम करते 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 शुद्ध हो जाऊंगा। तो कहते तो राग से रहित शुद्ध ही है, वो राग द्वेष तेरी पर्याय में है, वो तेरा स्वरूप नहीं है। ये मूल में बात, उससे भेद विज्ञान करना बहुत महत्व की चीज है। कोई कहता ना कि मेरे गुस्सा आता है, मुझे ऐसा होता है, मैं कहती हूँ बहुत करो, उसको अपना मत मानो। उसका अपना मान के रखा है ना, और वो अच्छा लगता है। किसी के गुस्सा निकाल दिया ना तो जरा शांति आती है कि नहीं, बोल दिया तो उसको अच्छा लगता है। तो उसको कहा हमने वो दुखमय माना, वो करते हुए तो अच्छा मान रहे हैं, सुखरूप मान रहे हैं। यहाँ लिखा ना, राग और द्वेष में जो एकत्व रहता था वह दुख का पंथ था। जो एकत्व है वो मान्यता में रखा है ना उसने, और वही मिथ्यात्व है। ये सब सेठ इंद्रो राजा दुख के पंथ पर है, राग और द्वेष के पंथ पर है, वह तो दुख के पंथ पर है, क्योंकि राग और द्वेष यह तो दुख है। हम तो क्या मानते आए हैं कि जो संयोग जो है उसके कारण मुझे पास नहीं है तो मैं दुखी हूँ, वो मुझे मिल जाएंगे तो मैं सुखी हो जाऊंगा। पर संयोग मिले तो राग द्वेष हटे के नहीं हटे? लोगों कहते हैं स्वर्ग के बहुत जीव सुखी हो गए, यहाँ के लोगों को लगता है नहीं अमेरिका वाले बहुत सुखी हो गए, तो वहां कहाँ राग द्वेष हट गए हैं? राग द्वेष बिना के थोड़े वीतरागी हो गए क्या वहां पर? तो कहते वो सारे ही दुखी हैं। मुमुक्षु पूछ लेते, पैसे वालों को तो मंद राग है। गुरुदेव श्री, मंद राग धूल में भी नहीं है, यानी बिल्कुल ये झूठ बात है। मंद राग वाले कहते हो पैसे वाले मूड होकर पैसे मेरे है ऐसा मानकर अंदर पड़े हैं। मुमुक्षु कहते उसे कमाने जाने की चिंता नहीं है और गरीब को सब चिंता है, यानी वही दुख लगता है। गरीब को तो अरे मेरे पास नहीं है, अभी क्या करूं, कल मेरा खाना कहाँ से आएगा, बच्चों को कहाँ से पढ़ाऊंगा, ऐसी कितनी चिंता है। और अमीर वाले को, अमीर आदमी को कुछ चिंता नहीं है तो वो दुखी नहीं लगता है। गुरुदेव श्री उत्तर देते, वह सब बात ही झूठ है। आज कोई कहता था मोरबी में 2.5 अरब का नुकसान हुआ है, भाई 2.5 अरब का मोरबी में नुकसान हुआ है, नुकसान तो किसे कहे, अपना भगवान 2.5 अरब तो क्या, जिसके गुणों की संख्या का पार नहीं है, ऐसा गुण और राग सहित मैं हूँ ऐसा मानना यही नुकसान है। बाहर का नुकसान क्या गिनना, हाँ वो तो नुकसान इतने अरब और इतने, वो तो गिनता है कहते। यहाँ क्या कहते हैं कि मैं कैसा हूँ कि जिसके गुणों की संख्या का पार नहीं, और इसके साथ राग को मिला दिया, तो राग सहित ऐसा मैं हूं ऐसा मानना यही महान नुकसान है। मैंने अपने को गुण सहित नहीं माना, राग सहित ही मान लिया। शास्त्र में तो पाठ है कि मुनि है ना, मुनि जब प्रमाद दशा में होते हैं, मुनि प्रमाद दशा में उन्हें कौन सा गुणस्थान है? छठा गुणस्थान है। ज्ञानी समकीति अनुभवी, परंतु प्रमाद दशा में हो उस समय कोई देव विरोधी देव उठा ले जाए और समुद्र में डाल दे, लवण समुद्र, समुद्र में फेंकने के साथ ही अंदर विकल्प तोड़कर निर्विकल्प हो जाते हैं। अंदर निर्विकल्प ध्यान होकर समुद्र में डूबते डूबते केवल ज्ञान पाते, अंदर में डूब जाते हैं बाहर में डूबे नहीं। लवण समुद्र 2 लाख योजन का समुद्र, 2 लाख कैसे कहा, कहां से कहां तक चौड़ाई, ऐसे वलयाकृति है ना, जम्बू द्वीप को पूरा घेरे हुआ है, 2 लाख उसकी विड्थ है। हाँ, डायमीटर नहीं कह सकते, विड्थ कह सकते। तो 2 लाख योजन का समुद्र, एक एक बिंदु से अनंत अनंत जीव मोक्ष गए, क्या कहा, एक एक बिंदु इन्हें एक एक, क्योंकि सभी प्रदेशों में पूरे 45 लाख जो योजन है वहां के सभी प्रदेशों में से कहीं ना कहीं से कभी ना कभी जीव मोक्ष गए हैं, तो वहां कैसे गए? मुनिराज समुद्र के ऊपर क्या चल के गए क्या, जहाज से गए? तो कोई ऐसे देव वैरी उनको उठा के फेंक देते हैं? तो एक एक बिंदु से अनंत अनंत जीव मोक्ष में गए, ऐसा कैसे कह सकते? क्योंकि अनादि कहने से कोई काल की बिगिनिंग ही नहीं ना, और हर 6 महीने 8 समय में 600-800 जीव जा रहे, तो कभी ना कभी, क्योंकि अनंत काल बीत गया है, तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी एरिया से तो गए हैं जीव, तो एक दो नहीं कहते अनंत भाई, क्योंकि वहां अनंत सिद्ध है। 45 लाख योजन में अनंत सिद्ध है, ये अनंत है तो वे जाए कहां से? 45 लाख योजन में से लवण समुद्र के ऊपर जो सिद्ध शिला है वहां भी अनंत जी सिद्ध है, तो वे गए कहां से? क्योंकि क्या विशेषता है, जहां वो अरिहंत अवस्था में विद्यमान है उसी आकाश के श्रेणी में, श्रेणी ने उसी पंक्ति में से सीधे ऊपर चले जाते हैं। हाँ, तो वे गए कहां से? वहां से गए, आहा हा, भगवान अनंत सिद्धों का समूह वहां है। 45 लाख योजन में कोई एक क्षेत्र का अंश खाली नहीं है, वे सब सीधे जाते हैं, सीधे ने बिल्कुल सीधा ऊर्ध्वगमन से, और ऊर्ध्वगमन तभी होता है 8 कर्मों का नाश होने पर। संसार अवस्था में ऊर्ध्वगमन होता नहीं है, वो मरण के बाद ऊर्ध्वगमन समाव से जाते ऐसा बिल्कुल है नहीं, सीधे जाते हैं। तो लवण समुद्र के ऊपर जो सिद्ध है वे वहां से गए हैं, ऐसी बातें हैं। बैरी ने जैसे ही पानी में फेंका, आहा, प्रमत्त दशा में थे इसलिए डाला, अप्रमत्त दशा में हो तो उठा नहीं सकते, विकल्प में पड़े थे उतने में उठा लिया। अच्छा, अब यहीं रुकेंगे,
ये बात नहीं है,
क्यों नहीं ऐसे उठा सकते? छठा सातवा चलता रहता है, ऐसा क्यों लिखा है पता नहीं है, क्योंकि वो छठा सातवा इतना अंतर्मुहूर्त में होता रहता है, जैसे छठे सातवे में उनके विहार के काल में भी छठा सातवा होता रहता है, आहार के काल में भी होता है, तो उस काल में भी उठा सकते हैं।
वो देव को कैसा पहलोगे, छठे में है के सातवे में?
हाँ वही तो,
जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकनम तदा देत हो लो।
नेहा भी